वृंदावन धाम की, श्री कोकिलावन धाम की। तो कोकिलावन मैंने पहले बताया क्योंकि कोकिलावन में श्री कृष्ण कोकिल बन के आते हैं, राजा रानी कोकिला बनकर आती हैं और सुंदर सुंदर पूजन करते हैं और ऐसा अद्भुत ध्वनि ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं कि वो सुनने के लिए सब देवता लोग आते हैं, यक्ष किम पुरुष गंधर्व किन्नर सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उनके ताल को स्वर को समझ नहीं पाता है। सब संगीत के विद्वान पंडित हैं ये लोग जन्म से ही, जैसे बंदर होता है ना जन्म से एथलीट होता है ना, वो गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्टिक होता है, वो कोई भी जिमनास्टिक का गोल्ड मेडल लेना वो बंदर के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है, खाली इंसानों के साथ कंपटीशन कर सकता है। तो वैसे जो जन्म से ही जिमनास्ट है बंदर, वैसे जन्म से ही संगीतज्ञ है सब लोग देवता लोग, लेकिन जो कोयल बोल रही है और जो कोकिला बोल रही है ना उसका आवाज कोई मैच नहीं कर सकता है, वेरी डिवाइन मेलोडी। ये एक सीन है जी, देवता लोग आकर सुन रहे हैं और कोकिल और कोकिला अपना गायन कर रहे हैं वहां पर आकर दिव्य गायन, इतना सुंदर वातावरण कोकिला वन में है। तो एक बार एक काम्य वन में ना जगह है सुंदर, उसका नाम है चरण पहाड़ी। कितने लोग गए आप में से इधर? चरण पहाड़ी में भगवान ने मुरली बजाई थी और वो मुरली बजाई थी उस पर्वत, शंकर जी का पर्वत है, तो शंकर जी पिघल गए उसमें पर्वत में मुरली का आवाज सुनकर और उनके चरण चिन्ह वहां निर्माण हो गए हैं। हरे कृष्णा। तो पर्वत पर चरण चिन्ह बने तो भगवान ने वहां पर जाकर मुरली क्यों बजाई? क्योंकि संध्या का समय हो रहा था और ग्वाल बाल को छोड़कर कृष्ण गए थे, तो ग्वाल बाल वो उदास थे, कहां गए, अभी तो हमारे साथ थे। और गोपियां वहां पर बहुत व्याकुल थी कि हमको मिलना, हमारा समय हो गया है। तो छुपे हुए कृष्ण जो है वो अचानक प्रकट हो जाते हैं पर्वत पर और वहां पर मुरली बजाते हैं, और मुरली बजाते ही इनको पता चलता है कि है अभी कहीं घूमने हुए हैं, उनको बताते हैं मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। तो जब उन्होंने फिर ग्वाल बालों को जब ही विदा कर दिया और गोपियों से मिले तो गोपियों को लेकर वो नंदगांव बरसाने में गए और रास नृत्य किया वहां पर उन्होंने, बहुत सुंदर। देखो रास नृत्य जो है ना शुरुआत तो वहां पर हुई थी वृंदावन में बंसी भट्ट पे, फिर चंद्र सरोवर में वसंत ऋतु में शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद में चप्पे चप्पे पर रास रचाया भगवान ने। तो नंदगांव में रास हुआ, बरसाने में रास हुआ, लेकिन रास में फिर वो गोपियों को हमेशा की तरह गर्व हुआ। तो वो नंदगांव बरसाने के रास के बाद में कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए और फिर कृष्ण अंतर्धान होकर गोपियों को विरह हुआ, बहुत विरह हुआ। तो उसमें एक श्लोक आता है गर्ग संहिता में, वो ऐसा है, सौदास राज महिषी विरहादति निवजातम सहस्र गुणितम नलपत्र राज्ञा तस्मात् तु गौणी कोटि गुणितम जनकात्मजा यास्तस्मात् अनंतमति दुःखमलं हरे नः। इसका अर्थ यह है, गोपियां कह रही है कि एक राजा था सौदास नाम का, उसकी पत्नी का नाम था मदयंती। राजा सौदास जो वशिष्ठ मुनि के शाप से ब्रह्म राक्षस बन गए, तो उसकी पत्नी को जो विरह हुआ अपार दुख हुआ, उससे 1000 गुना नल की पत्नी दमयंती को दुख हुआ। अब ये कथा पुराणों में आती है नल दमयंती की, हाँ बहुत सुंदर कथा है। तो उससे कहते हैं कि जब नल दमयंती का विरह हुआ तो दमयंती को उस सौदास मुनि की पत्नी जो थी मदयंती उससे भी 1000 गुना दुख हुआ विरह का, उससे कोटि गुना दुख जो है वो सीता को हुआ जब वो उनका विरह हुआ, तो भेज दिया ना उनको वाल्मीकि आश्रम में, तो गर्भवती थी बहुत दूर रही उनसे, उससे कोटि गुना दुख जो है सीता को राम जी के विरह में हुआ, ऐसे गोपियां कह रही है। और उससे अनंत गुना दुख है कृष्ण हम ब्रज गोपियों को है जब आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे अपना विलाप कर रहे हैं, अपने हृदय का दुख व्यक्त कर रहे हैं। उधर कृष्ण यहाँ विलाप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वैलियों को पूछ रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण आदरणीय को लेकर संकेत वट आए। आप संकेत वट गए नकल? संकेत वट की और एक लीला है कि इनको छोड़कर कृष्ण आदरणीय को लेकर संकेत आए, वो संकेत में आकर उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया, एक विशिष्ट लीला है उनकी। तो कहते हैं परस्पर श्रृंगार लीला, प्रभु जी हरे कृष्ण गहवर कुंड में उन्होंने परस्पर श्रृंगार लीला किया है और यहाँ पर भी उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया है, मतलब इन्होंने इनका और कोई मेकअप मैन नहीं है, राजा रानी कृष्ण का श्रृंगार कर रही है, कृष्ण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। और ये परस्पर श्रृंगार करके सज धज के दोनों भद्र बन गए, 12 वनों में से एक इम्पोर्टेंट वन है। फिर खदीर बन गए जो उपनंद बाबा का वन है, जहाँ पर उपनंद बाबा का गौशाला है और उनको पानी पिलाने की जगह है, तो खदीर वन। खदीर का मतलब कत्था, उम्र कत्था के वृक्ष रहा करते थे पहले। खदीर मुनि भगवान ने बकासुर को मारा है, तो खदीर वन गए, वहां से बेल वन गए, बेल वन में लक्ष्मी देवी ने तपस्या किया है, रास मंडल में उनको प्रवेश नहीं मिला। उनको कहा गया कि आपको ना ये ऐश्वर्य भाव छोड़ना पड़ेगा, गाय का दूध निकालना पड़ेगा, गोबर के कंडे बनाने पड़ेंगे, दही जमाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, मैं तो वैकुंठ की रानी हूँ, मैं तो सब काम नहीं कर सकती, तो फिर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर वो उसी स्थिति में प्रवेश करना मिलना चाहिए, इसलिए वो बेल बन गई तपस्या करने के लिए। और कहते आज तक वो तपस्या कर रही है, लेकिन उनको रास में प्रवेश नहीं मिला है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव लेकर रास में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो ये परस्पर श्रृंगार करके भद्रवन गए, खदीरवन गए और बेलवन से होकर कोकिला बनाए। अभी हमारी कथा यहाँ पर जुड़ती है। तो दोनों कोकिला बनाए, राधा रानी को कृष्ण ने बहुत चलाया। आज के तारीख में भी शरण पहाड़ी से चल के जाएंगे, बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, वहां डांस करेंगे, फिर वहां से संकेत जाएंगे, फिर वहां से चल के नंदगांव से होकर कोकिला बनाएंगे। बहुत चलना होता है, बहुत चल गए। तो राधा रानी कहती है कि अभी मैं थक गई हूँ, अब जानती नहीं हूँ मैं विष्णु की कन्या हूँ, मेरा कदम तो ना मखमल के नीचे उतरता भी नहीं है, इतना मेरे पिताजी मेरी कोमलता से रखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत चलाया है, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे चला नहीं जाता है। तो कृष्ण उनकी इतना सेवा करते हैं ना, बीच में उनके चरण दबाते हैं, उनको पानी लाके देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं। तो राधा रानी कहती है अभी मुझे कंधे पे ले लो, मुझे चला नहीं जाता है। तो वहां पर ना गोपियां वहां आ जाती हैं, वो जो ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं ना, वो दूर है, कोकिला वन बहुत बड़ा है ना, तो कोकिला वन के एक कोने में गोपियां रो रही है और ये कोने में ये लोग बैठकर बात कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं चलो, अरे वो कहते हैं गोपियां आ गई, हमको भागना होगा अभी, चलो तुरंत। तो कहते नहीं 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 मैं चल नहीं सकती हूँ, मुझे कंधे पर बिठा दो। तो कृष्ण कहते हैं वो थोड़ा सा घमंड हो गया है कि मैंने बहुत सेवा किया है, थोड़ा झुक जाते हैं और वो कंधे पर बैठने जाने वाले थे उसमें गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। राधा रानी सोचते अरे मैंने ऐसा क्यों किया, इतना संग था मेरा, मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा चल लेती मैं, लेकिन वो भी खो गई, खो दिया मैंने उनको। तो बहुत जोर से वो कृष्ण को पुकारने लगी। तो राधा रानी यहाँ कृष्ण को पुकार रही है, गोपियां वहां पुकार रही है, इनकी आवाज वो सुनते हैं, उनकी आवाज ये सुनते हैं और दोनों भाग के मिलते हैं। तो राधा रानी कहती है कृष्ण मुसा गोपियां कहते तुम कितनी भाग्यवान हो, तुम अकेले कृष्ण के साथ थी। हाँ मैं बहुत भाग्यवान थी, मैंने बहुत सेवा की, मैं चरण दबाए, मेरा श्रृंगार किया, मेरे को जल पिलाया, मेरी बहुत सुंदर सेवा की मेरी, लेकिन मुझे ही घमंड हो गया और मैंने उनको कहा कि कंधे में बिठाओ तो वो अदृश्य हो गए। अभी देखो मैं अभी इतनी गलती करके सब हम लोग सब लोग उनको खो बैठे, हमने वहां अहंकार किया, इन्होंने कहते हमने यहाँ कर अहंकार किया। तो राधा रानी इतनी बिलख रही थी उस समय, इतनी रो रही थी कि अभी क्या लिखा है सर, पुष्प का होता ना मकरंद, यानी कि पुष्प से निकलने वाला जो होता ना हनी मधु, उससे अगुरु से कस्तूरी से चंदन से और केसर के जल से उन्होंने राधा रानी का अभिषेक किया उनको सहलाने के लिए, शांत करने के लिए। उसके बाद थोड़ी शांत हो गई और राधा के साथ गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, फिर कृष्ण कोकिला उन्हें दोबारा प्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हुए थे। फिर सब लोगों ने आनंद किया और रास नृत्य किया है कोकिला वन में। कृष्ण ने अनगिनत रूप धारण किए और गोपियों के साथ में रास नृत्य किया कोकिला वन में। तो फिर जब कृष्ण लौट के आए तो गोपियों ने पूछा तुम कहाँ गए थे, कैसे गायब हो गए। तो अभी एक लंबी कथा, वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि पुष्कर द्वीप में हंस मुनि संकट में थे, उनको बचाने के लिए गया था। तो उस समय कोकिला वन में श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी को और गोपियों को अपना अष्टभुज रूप दिखाया, शेषशायी नाग के ऊपर लेटा हुआ, शेषशायी नाग पर लेटा हुआ अष्टभुज रूप दिखाया राधा रानी को और गोपियों को। कहां दिखाया, कोकिला वन में, और राधा रानी को लक्ष्मी बनाकर भी दर्शन दिया सब लोगों ने, सुंदर लीला वहां पर हुई है। उसके बाद में उनका विवाह हुआ है भांडेरवन में, राजा और कृष्ण का एकांत में। उसके बाद में विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी ने विवाह किया उनका। उसके बाद में वो यमुना जी में गए हैं और राधा रानी ने उनकी मुरली छीनी है और राधा रानी के हाथ में कमल था, वो कृष्ण ने छीना है। फिर उन्होंने बहुत देर तक कृष्ण का पीताम्बर, बांसुरी और छड़ी, गाय चराने वाली, तीनों राधा रानी ने चुरा लिए और राधा रानी के हाथ का कमल कृष्ण ने चुरा लिया, उनका शॉल भी चुरा लिया। फिर दोनों छीना झपटी करने लगे, भागा दौड़ी करने लगे, फिर कृष्ण ने कहा कि पहले मुरली मुरली वापस करो, फिर मैं तुम्हारी शाल और कमल वापस करता हूँ। फिर दोनों ने वापस कर दिया और उसके बाद में फिर उन्होंने वैजयंती माला धारण की और फिर दोनों भांडेर बन गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जब वो लौट कर आए ना कृष्ण भगवान, 112 साल के बाद में लौट के आए, जब इनका विरह चरम सीमा पर था, दंत वक्रो मारने के बहाने कृष्ण भगवान मथुरा में आए और मथुरा से अंदर प्रवेश किया और सब गोपियों से मिले, सब ब्रजवासियों से मिले। वो तो उसे मरने ही वाले थे विरह में, लेकिन उससे राइट टाइम पे वो पहुंच गए और उनका कुछ संवाद हुए वहां पर। तो गोपियों ने कहा कि हमने सुना था कि आप उधर रोते थे द्वारका में हमारी याद में, और आपके आंसुओं की नदी बनी है गोमती नदी, उसको हमको दर्शन कराओ। तो भगवान ने कोशी में उनको गोमती का दर्शन कराया और गोमती कुंड प्रकट हो गया है, कोशी में है वो, कोशी में द्वारका प्रकट हुई है। और उन्होंने कहा कि हमारे ब्रज में तो सागर तो है नहीं समुद्र, और आपने सागर में अपना बनाया था, हमने सोचा सुना था हमको सागर का भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने ना सागर को प्रकट किया, दो जगह प्रकट किया है, कोशी में प्रकट किया, उसका नाम है रत्नाकर कुंड, द्वारका का समुद्र प्रकट हो गया है, और यहाँ पर कोकिला वन में भी एक रत्नाकर कुंड है। गोपियों ने अपने घर से सब गायों का दूध मिलाकर लाया और वहां कुंड बनाया, रत्नाकर कुंड। तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा से उस रत्नाकर कुंड में से बहुत अनंत प्रकार के ज्वेल्स तैयार हो गए, रत्न तैयार हो गए। उन रत्नों को राधा रानी बीनती थी और कृष्ण के लिए अलंकार बनाती थी, गोपियां बीनती थी और राधा रानी का श्रृंगार करती थी रत्नाकर कुंड से। तो उस सुंदर रत्नाकर कुंड को हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, एक मंत्र है सुंदर। हाँ, सख्या क्षीर सम अद्भुत रत्नाकर सरोवरे नाना प्रकार रत्नानां उद्भवे वरदे नमः। फिर जो रास मंडल है वहां पर कोकिला वन में, यहाँ पर भगवान ने रास रचाया था, उसका भी एक सुंदर प्रणाम मंत्र है, यहाँ से प्रणाम कर लो। रास क्रीडा प्रदीप्ताय गोपी रमण सुंदर नमः सुख मनोरम्य स्थलाय सिद्धि रूपिणे। तो लास्ट कथा बचती है कोकिला वन की, तो ब्रह्म वैवर्त में गणेश खंड में आती है। तो वो कथा ऐसी है, गणेश खंड यानी गणेश जी का वर्णन होता है उसके अंदर। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले भवानी और शंकर जी को कार्तिकेय का प्राप्ति हुई। तो कार्तिक जब जन्म, वो बहुत अद्भुत जन्म है सभी के, तो कार्तिक जी का जो जन्म हुआ था तो कार्तिक नाम के जाति के स्त्रियों ने उनका लालन पालन किया था, उनको संभाला था, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। उसके बाद में गणेश जी का जन्म हुआ, उसकी भी अद्भुत कहानी अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सुंदर जन्म हुआ उनका। और उनके जन्म के उपलक्ष्य में पार्वती देवी ने ना सब लोगों को इन्वाइट किया गणेश जी का जन्म महोत्सव करने के लिए। तो आप जानते हैं ना, सूर्य का विवाह छाया देवी से हुआ, उषा देवी से हुआ, और सबसे पहले उनको तापी नदी जो है ना गुजरात में, वो सबसे ज्येष्ठ कन्या है उनकी। उसके बाद यमराज प्राप्त हुए, उसके बाद में यमुना प्राप्त हुई, उसके बाद में शनिदेव उनके चौथे संतान है। तो शनिदेव भी जन्म से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, फ्रॉम बर्थ। देखो मैंने इस प्रवचन में कई बार बताया है कि जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, देवता हैं, देव हैं, सब लोग ना उनका दो टाइप का जीवन होता है। एक होता है ऑफिशियल लाइफ, उनका ड्यूटी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक चीज है, और ये उनका निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ, इसमें सब लोग भगवान के भक्त हैं। तो शनिदेव सब लोग उनको चाहते नहीं है कि भाई उनकी वक्र दृष्टि हमारे ऊपर ना गिरे और ऐसा ना हो, शनिवार को तेल चढ़ाओ, बहुत सारा चीजें लोग डरते हैं उनसे, उनको मतलब यमराज और शनिदेव इनको बहुत डरते हैं लोग, क्योंकि वो लोग जो स्वार्थी होते हैं ना वो ही डरते हैं कि कहीं हमें शनि अपने कर्म का फटका ना दे दे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको पहचानते हैं कि ये इनका ड्यूटी है, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक में भगवान के परम भक्त वैष्णव है, ये भक्त लोग जानते हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। तो उन्होंने शनि भगवान जन्म से ही परम परम विरक्त और कृष्ण भक्ति में रत थे, हमेशा इतने रत थे कि सूर्यदेव को उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। अरे भाई इसका कैसे होगा, कुछ संसार में रुचि नहीं इसको, चलो उसका विवाह कर देते हैं। तो उनका ना सुंदर एक स्त्री से, सर्वगुण संपन्न सुंदर स्त्री से उनका विवाह किया, देवी समान थी वो। लेकिन ये इतने विरक्त थे कि विवाह करने के बाद भी कभी उसको मिलने ही नहीं गए, और जब मिलते थे तभी उसके चरणों में देखते रहते थे, उसके चेहरे को देखते नहीं रहते थे। तो पत्नी ने बहुत दिन सहन किया उनका, एक दिन उनको क्रोध आया बहुत, कैसे पति हुआ, हमारी ओर देखते भी नहीं, हमको पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, आपको तो हमारे बात करने में भी रुचि नहीं है, मिलने में रुचि नहीं है, देखने में रुचि नहीं है, किसी में रुचि नहीं है, और सदा भूमि को देखते रहते हैं आप, मैं आपको शाप देती हूँ। वो भी पतिव्रता थी, सब लोग सोच लेना, हाँ शाप देती है कि इसके बाद आप नजर उठा के किसी को देखोगे ना तो उसका सर फटके गायब हो जाएगा। इतना आपको जमीन पर देखने का शौक है ना, उधर ही देखते रहो, मुझे नहीं देखते आप, मेरे चेहरे को दर्शन नहीं करते हो, तो आप किसी का दर्शन नहीं करेंगे। तो उसके बाद तो और जमीन को देखने लगे, क्योंकि अभी तो रीजन हो गया ना उसके लिए, पहले जमीन को देखते थे, किसी को किसी भोग्य वस्तु को देखते नहीं थे। उसके बाद पत्नी का भयंकर शाप प्राप्त हो गया, तो फिर वो ऊपर देखना नजर उठाना ही भूल गए वो। तो अभी यहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ, तो सूर्यदेव को भी निमंत्रण है, सभी लोगों को निमंत्रण है, तो शनिदेव को भी बहुत बहुत आग्रह से निमंत्रण दिया गया। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सब बर्थडे सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, साकरपुड़ा, इसमें बिल्कुल इनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो भी पार्वती देवी महादेवी विनती कर रही है, भवानी देवी, तो जाते हैं वहां पर, और बेचारे वहां पर नीचे देख रहे हैं। और पार्वती देवी का उद्देश्य क्या है कि मेरे बेटे गणेश जी का जन्म हुआ है, तो सब लोग उनको देखकर आशीर्वाद देना चाहिए। शी हैज कॉल्ड एवरीबॉडी टू ब्लेस द चाइल्ड, और कोई पर्पज नहीं उसका, सब लोग आके आशीर्वाद दे रहे हैं और शनिदेव नीचे देख रहे हैं। तो पार्वती देवी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आप अकेले बचे हो, परम भक्त हो भगवान के, लेकिन मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया आपने, मेरे बेटे को दर्शन करो, अपनी नजर उसके ऊपर डालो और कृपा करो उसके ऊपर। तो कहते मैया मेरे को शाप है मेरी पत्नी का, क्या करो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद मेरे बालक के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा करके बहुत बहस होती है वहां पर। वो बेचारे नम्र है, उनको कोई गर्व नहीं किस बात का, वो बिल्कुल ऐसे नम्रता से खड़े हैं, नहीं मैया आपके घर में अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं मेरा आदेश है आपको, आपको मेरे बालक को देखना ही होगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो फिर मजबूर से उनको ना, जैसे ही गोद में जो सुंदर बालक बेटा हुआ है, जैसे उसको देखते हैं, उसका सर धड़ से अलग होके सीधे गौलोक पहुंच जाता है, सीधा गौलोक में, और पार्वती का जो गोद है ना पूरा खून से लथपथ हो जाता है। पार्वती इतना बिलखती, इतना आक्रोश करती है अपने सुंदर पुत्र के ऐसे मृत्यु को देखते हुए। वहां शंकर जी आते हैं और फिर हाथी का सर काट के लाते हैं और मंत्र बोलकर उसको लगाते हैं, फिर भी वो रो रही रो रही, उसको पता ही नहीं इतना इतना दुख हो रहा है। कहते अरे देखो तो सही कितना सुंदर दिख रहा है बालक, अभी सांत्वना करके उसको मजबूर करते देखने के लिए। तब वो जब भी खून वून सब गायब और सुंदर हाथी के मुख वाला बालक को देखते हैं तो वो उसका सांत्वना हो जाती है। तो ऐसे शनिदेव की कथा है, शनिदेव को बुरा मत मानना आप कभी, शनिदेव कभी किसका बुरा नहीं करते हैं। बताओ आपका बुरा कौन करता है, हम खुद अपना बुरा करते हैं। और फिर शनि को दोष देते हैं, फिर राहु को देते हैं, फिर केतु को देते हैं, फिर स्टार को देते हैं, इसको देते हैं, बीवी को देते हैं, पति को देते हैं, बच्चे को देखते हैं, तू जब से आया है तब से सब हो रहा है है ना, सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोगते रहते हैं, खुद ही कारण है, लेकिन कन्वीनियंटली सारे तारों को बेचारे को दोष देते रहते हैं। और उनका काम ही ऐसा है कि उनका ड्यूटी है वो, कि भाई जो दोष है उनको फल देना है उसका, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अधिकार नहीं है कम या ज्यादा करने का। तो इस लीला के माध्यम से कृष्ण भगवान ने शनिदेव को कोकिला वन में परमानेंट स्थान दिया है, शनिदेव परमानेंट वहां निवास करते हैं। और आज दुर्भाग्य से कोकिला वन इतना सुंदर स्थान है, इतनी सुंदर लीलाएं वहां पर है, कोकिला बिहारी वहां पर विराजते हैं और रत्नाकर कुंड है और बहुत सुंदर लीलाओं का वहां पर अनंत बार भगवान ने लीला किया है, लेकिन लोग उनको भूल गए हैं और शनिवार को वहां भयंकर भीड़ होती है। ऐसा बैरिकेड लगा के रखा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज रविवार है इसलिए आप निश्चिंत रहिए। शनिवार नहीं है, सब लोग तेल चढ़ाते हैं उनके ऊपर, शनि का प्रकोप कम हो जाए इसलिए उनको जाकर ठंडा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग भक्त लोग हो, आप शनि को यह प्रार्थना मत करना, जब शनि दशा आएगी थोड़ा कोमल रहना मेरे ऊपर, ज्यादा कठोर मत रहना, हाँ ऐसा नहीं बोलते। हम शनि के पास जाएंगे एक वैष्णव का दर्शन करने के लिए, परम वैष्णव के रूप में उनका दंडवत करने के लिए जा रहे हैं। हम शनि ग्रह के रूप में दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। शंकर भगवान के पास जाते हैं, देखो यहाँ पर शंकर भगवान ने मैंने वंदन किया उनको जाके, महादेव के रूप में वंदन नहीं किया, भगवान के परम भक्त परम वैष्णव के रूप में जाके प्रणाम किया, गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रणाम किया, चक्रेश्वर महादेव के रूप जो भगवान के लीला में सम्मिलित है उस रूप से दर्शन किया उनका। जैसा आप दर्शन करेंगे वैसा फल मिलेगा। डर डर के जाएंगे ऐसा मत करना ये मत करना कृपया ये बल चढ़ाता हूँ प्लीज ये मत करना वो मत करना, तो वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक आप खुद वैष्णव बनकर उनको वैष्णव के रूप में देखेंगे तो आपको दूसरा लाभ मिलेगा, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आप उनके पास वैष्णव के रूप में जाएंगे। और जिसने बुरे कर्म किए हैं उनको पता है कि दंड मिलने वाला है, वो डर डर के जाएगा उनके पास। जो भगवान का भक्त है उनको किसका डर है, वो तो पाप कर्म छोड़ दिया उन्होंने सबने, हरिनाम का जप करते से पाप कर्म नष्ट हो गए। अभी सबको वैष्णवों को मिलते हैं, शंकर को मिलते हैं, ब्रह्मा जी को मिलते हैं, भवानी देवी को मिलते हैं, शनि देव को मिलते हैं, राहु केतु, किसी को डरते नहीं है, जो करना है करो, अरे जो होगा वो मंजूर है भगवान होगा, हमारे तो मालिक भगवान है, उनको उनके चरणों में हमने जीवन समर्पित कर दिया है, फिर भगवान चाहे तो फटका दे नहीं दे आप लोग क्या कर सकते हो, उनकी इच्छा होगी तो देंगे फटका मुझे आप, और उनकी तरफ से फटका आ रहा है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। तो वो भाव से जाते नहीं है ग्रहों के पास तारों के पास और देवताओं के पास, सबके पास जाते हैं क्योंकि सब लोग भगवान के भक्त हैं, विशिष्ट भक्त हैं, और विशिष्ट हैं इसलिए भगवान ने उनको ये सब अधिकार देके रखे हैं कि तुम ये देखना तुम ये संभालना तुम ये संभालना, पापी लोगों को दंड तुम देना, बृहस्पति को ये कार्य सब दे दिया है, चंद्र को उसका कार्य दे दिया है। वो भगवान के बहुत गिने चुने भक्त हैं सब लोग, स्पेशल सोल्स। तो आप भी चंद्र और सूर्य बन सकते हो अगर आप में वो योग्यता होती है तो हो सकते हो, लेकिन वो बनने की जरूरत नहीं है आपको, आप भगवान का नाम लो और परम वैष्णव बनो, ये सारे देवता आपकी सेवा करेंगे क्योंकि उनको ये भी ड्यूटी दिया गया है, भगवान के भक्त होते हैं उनकी सेवा करना है, उनको सपोर्ट देना है, उनका अनुकूल उनकी देखभाल करनी है। होता ना वो किसी बड़े आदमी के खास लोग होते हैं तो उनको कैसा देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं देखो शादी में जो है ना एक ग्रुप है ना ये हमारा विशेष खास ग्रुप है, 10 लोग लगा देते उनके पीछे कि इनका खातिर करो खाना पीना रहना उनको एकदम सुख सुख दो खुशी दे दो उनको। तो वैसे हम लोग खास लोग बनना चाहिए आप लोगों को भगवान के, जब भगवान के बनोगे ना तो सब मैसेज जाएगा मेरे लोग आ रहे हैं इनको संभाल के दो, इनको देखभाल अच्छी करना है, उनकी कोई कसर नहीं होनी चाहिए, मेरे लोग ही है। जो भगवान ऐसे बोलते हैं कि मेरे लोग हैं तो सब देवतागण उनके पीछे लग जाते हैं, अरे आपको क्या कहे देवताओं को बात तो छोड़ ही दो, वो तो आपके पीछे डोली रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब राधा रानी का नाम लेते हैं ना आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे जो है राधा रानी है, जब उनका आप नाम लेते हैं तो धावत यही व संभ्रम, संभ्रमित होकर भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं, कौन मेरे राधा रानी का नाम ले रहा है। और कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है और राधा का नाम लेता है मेरा सुदर्शन चक्र उनके पीछे जाता है रक्षा करने के लिए, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको, ना कोई शनि ना कोई राहु ना कोई केतु कोई देवता कोई अप्रसन्न कोई प्रसन्न होगा, लेकिन चक्र के सामने किसका कुछ चलता नहीं है। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनके पीछे भगवान की इच्छा से सुदर्शन चक्र जो है पीछे पीछे जाता रहता है टू प्रोटेक्ट योर डिवोटी। तो आप लोग ना ऐसे 50 तक आगे मत्था मत टेको, यहाँ जाके जल चढ़ा रहे हो वहां तेल चढ़ा रहे हो यहाँ फूल चढ़ा रहे हो लाल फूल वहां हरा फूल वहां नीला फूल, ये सब झंझट में मत पड़ो, एक ही जगह जाओ और बाकी सब जगह पे वैष्णव के रूप में जाओ, ये डर डर के मत जाओ, ये अभिषेक करो वो अभिषेक करो लघु रुद्र दीर्घ रुद्र ये सब करने को मत जाओ, सबके पास जाओ आदर पूर्वक जाओ मत्था टेक के भक्ति की मांग करो तो सब आपको वरदान देंगे क्योंकि उनमें शक्ति दी है भगवान ने, लेकिन मांगता नहीं उनके पास कोई जाके। हाँ देवी देवी के पास जाएगा तो बोलेगा इनको अच्छा पति दो अच्छा पत्नी दो वैसा ही चीज मांगते रहते हैं, तो उनको देने का अधिकार दिया वो देते रहते हैं, लेकिन आप बोलेंगे हमको भक्ति चाहिए भगवान के चरणों की तो वो स्टॉक में रखा है अलग से वो देके निकाल के देंगे आपको, मांगने को आता नहीं है, इसलिए आप जाएंगे तो उनके पास बहुत स्टॉक पड़ा रहता है, आपको वो भक्ति का वरदान दे सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं सबके पास, मैं हर सोमवार को शंकर जी को जल चढ़ाता हूँ, हर रोज सुबह को जल चढ़ाता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मुझे ये मत हो ये मत हो। मैं उनको वंदन करता हूँ कि आप नारायण जैसे ही हो, आप महादेव हो, आप सब जगन माता हो, इस भावना से प्रणाम करता हूँ। मुझे ये दो मुझे वो दो बोलने की जरूरत क्या है? अरे हमारे मालिक बैठे हैं, सब जानते हैं हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मालिक ढूंढ लिया है तो सब जानते हैं हमारा हित किस में है, सबकी हमारे सबकी देखभाल कर रहे हो, वी डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? आप बोलेंगे अरे शनि को सामने से मत देखना, वो शनि देखेंगे हमको तो उनकी दृष्टि पड़ेगी तो सब बुरा हो जाएगा, ये सब चक्र में हमने पड़ते हैं। अब जाइए खुले दिल से प्रणाम कीजिए, बोलिए वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे बिंदास प्रणाम करना उनको, देखो क्या चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।